طب خير. سورة هود سورة هود مكي سورة ہے، اس میں 123 آیات، 10 رکوع، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 1936، حروف 7926 ہیں. سورۃ ہود میں 7 انبیاء کرام کے حالات، واقعات اور ان کی امت کی نافرمانی اور سرکشی بیان کی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کو خاص اہمیت حاصل ہے. قرآن میں حضرت ہود کا ذکر 7 جگہ پہ آیا ہے، جبکہ قوم عاد کا 9 مرتبہ ذکر آیا ہے. اس سورت کے بارے میں آپ یہ حدیث بھی سنتی جائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتوہا، مجھ کو سورت ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اور اس کی ہم مضمون صورتیں کون سی ہیں؟ سورت ہود کے بعد سورت واقعہ، اما یتسالون اور اذا الشمس کورت، سورت تکویر. آپ نے کہا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس حدیث کو حاکم اور ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں گی اس سورت میں، آپ پڑھیں گی کہ جب کوئی قوم انکار کرتی ہے، کسی کے ساتھ ذرہ برابر رعایت نہیں کی جاتی، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کا رشتہ دار ہے، اور اللہ کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے نہ کسی پیغمبر کی بیوی. بلکہ جب ایمان اور کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے. اس وقت جو ہے خون، نسب، رشتہ داریوں کا ذرہ برابر لحاظ کرنا یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو جو تعلیم دی، جو ان کا تزکیہ کیا، تو 3-4 سال بعد مکہ کے مہاجر مسلمانوں نے غزوہ بدر میں اس کی جو ہے وہ نشاندہی کی، اس کا جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا بہترین جو ہے وہ مظاہرہ کیا. اور آپ جب یہ سورت پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ اس سورت میں جو ہے وہ بڑی شدید دھمکی ہے، بہت زیادہ گھن گرج ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن اور دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان پر پھر اللہ کا جب کوڑا برستا ہے تو کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی سختی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ہود، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. آپ دیکھیے کہ سورۃ ہود کی جو ابتدائی آیات ہیں، اس کی پانچ آیتیں جو گیارہویں پارے کے اختتام پر ہیں. آپ دیکھیں گی, آپ نوٹ کریں گی کہ سورت ہود کی پہلی چار آیات میں سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات, الف لام را سے اس کا آغاز کیا گیا, اور الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. الف لام را. پھر آپ دیکھیے دوسری بات, کتاب ان احکمت آیاتہ, کہ قرآن آیات جو ہیں یہ محکم ہے. احکمت خاص بات ہے, ہا کاف میم اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اچھی طرح گانٹھنا, مضبوط کرنا, محکم مضبوط. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں مضبوط ہیں, مستحکم ہیں, جچی تلی دلیلوں کے ساتھ ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے حالات کسی بھی رخ پر چلے جائیں, کائنات کتنی ہی کروٹ لے لے, بڑی بڑی اس میں تبدیلیاں آ جائیں, سائنس کتنی ترقی کیوں نہ کر لے, کمپیوٹر اور سائنسی ترقی کا دور دورہ ہے, لیکن قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول اور حقائق ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کیوں؟ کتاب احکمت آیاتہ, کہ کتاب ہے مضبوط مستحکم اس کی آیات, کہ یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ فرمان ہے جس کی آیات پختہ ہیں, محکم ہیں, مضبوط ہیں. بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو جو ہے وہ بڑا محکم بنایا ہے, مستحکم, جچا تلا, مضبوط ہیں, یہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور قرآن مجید کی بنیاد جو ہے یہ مضبوط آیات ہیں. نمبر تین, ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ثم فصلت, پھر تفصیل بیان کی گئی ہے. اب قرآن مجید کی ہزاروں خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں مفصل ہیں, واضح, کھلی ہوئی, سادہ, صاف صاف, ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں آتی, کوئی مشکل نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم فصلت, محکم بھی ہیں, مضبوط بھی ہیں, پھر اس کے بعد جو ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. الجھا ہوا بیان نہیں ہے, مبہم نہیں ہے, ہر بات کو الگ الگ صاف صاف کر کے سمجھا دیا گیا ہے. اور سمجھایا بھی کس نے ہے؟ من لدن حکیم خبیر, اس ذات کی طرف سے جو کہ حکمت والی ہے, خبیر خبردار ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک آیت میں آپ نے تین بڑی باتیں پڑھی. نمبر ایک, حروف مقطعات جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے. نمبر دو, اس کی آیات مضبوط, جچی تلی اور محکم ہے. سائنسی ترقی, کمپیوٹر کے زمانے میں کسی خوف زدہ ہونے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دین اسلام کی بنیاد قرآن ہے, اور قرآن کی بنیاد یہ آیات ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ مضبوط ہیں. اور نمبر تین, کہ ان آیات کو ایک حکمت اور خبر رکھنے والے نے کھول کھول کر صاف صاف بیان کیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ حکیم خبیر ہے, حکمت والا ہے, دانا ہے, باخبر ہستی ہے. اس کو خوب پتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ کیا ہیں, اور لوگوں کو کیا جو ہے وہ چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ تین باتیں کہنے کے بعد, اپنا بہترین تعارف کروانے کے بعد, قرآن مجید کی جو ہے وہ آیات, ان کا تعارف کروانے کے بعد, دین کی بنیادی باتیں پیش کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بنیادی پیغام دیا ہے. قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے کہ اللہ تعبدو, یہ کہ نہ عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی. تو یہ ہے قرآن کا بنیادی پیغام. کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. یہی پیغام تمام دین اور شریعت کی بنیاد ہے, اصل ہے. اللہ کے رسول ہمیشہ اسی پیغام کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے. اللہ تعبدو الا اللہ, کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی. اور دوسری جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور بے شک میں اسی کی طرف سے تم کو جو ہے وہ ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. تو جو لوگ قبول کر لیتے تھے لوگ, ان کو رسول جو تھے وہ خوشخبری دیتے تھے اللہ کے فضل کی, رحمت کی, جنت کی, اور جو قبول نہیں کرتے تھے ان کو ایک ہولناک عذاب سے جو تھے وہ ڈراتے تھے. اور یہی انذار اور بشارت کا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا. تو ایک اللہ کی بندگی کیا ہے؟ کہ اپنی جو جبین ہے اس کو اللہ کے سامنے جھکا دیا جائے, اپنی پیشانی کو اللہ کے در پر جھکایا جائے. اسی میں انسان کی عظمت اور عزت کا راز ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہاں پر یہی پیغام دیا جا رہا ہے, اور توحید بندگی کا پیغام. اور اس وقت بھی مکہ والوں کے پاس کتنے بت تھے؟ 360 پتھروں کے بے جان بت تھے جو انہوں نے حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی. اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر 3 جو ہے, آیت نمبر 3 میں یہاں پر جو ہے جو کفر کرنے والے ہیں, جو شرک کرنے والے ہیں, ان کے سامنے جو ہے ایک لائحہ عمل رکھا جا رہا ہے. وہ کیا؟ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت دفعہ پڑھ چکی ہیں, غین فارا غفارا, اس کا مطلب لفظی معنی ہے چھپانا. تو اللہ تعالی سے جو ہے وہ استغفار کرو, کہ معافی مانگو کہ وہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے, چھپا دے, اپنا فضل کرے. اور کسے؟ اپنے رب سے, کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو, اس کی طرف رجوع کرو. اور آپ دیکھ لیں کہ جب انسان جو ہے اس کے اندر یہ احساس زندہ ہو جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, اور اگر اس نے گناہ نہ چھوڑے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو جو ہی انسان کو یہ گلٹ ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے استغفار کرتا ہے, گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اور طے کرتا ہے کہ اللہ تم, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, تیری طرف قدم بڑھاتا ہوں, اور تو مجھے معاف کر دے. اور یہاں پر جو ہے یہی توبہ استغفار جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. نمبر 1, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تو پہلی چیز جو ہے وہ استغفار ہے. دوسری بات, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور پھر تم اس کی طرف لوٹ آؤ. توبو جو ہے توب سے ہے, اور اس کے معنی ہے پیچھے آنا, لوٹ آنا, رجوع کرنا. تو گناہوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کیا جائے. جو گناہوں کی زندگی ہے, جو گناہوں کی راہیں ہیں, انہیں چھوڑ کر نیکی کی راہ, بندگی کی راہ جو ہے اس کو اختیار کیا جائے. وَتُوبُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور اس کی طرف پلٹاؤ. تو توبہ کے معنی پلٹ آنا. انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پوری طرح اللہ کا ہو جاتا ہے اور تمام رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے, اسی کے سامنے جھکا رہتا ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. آپ کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 100 100 بار جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں. اور پھر اس میں आप खास तौर पर सैयदुल अस्तगफार जो है उसको आप याद कर सकती हैं, क्योंकि सैयदुल अस्तगफार जो है, जितने भी अस्तगफार हैं, सैयदुल अस्तगफार उसका सरदार है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आप मतलब करें तो आपको अस्तगफार की बहुत सी दुआएं जो है वो मिलेंगी, लेकिन कम अज कम जो है, जो सैयदुल अस्तगफार वो तो जरूर ही याद कर लेना चाहिए। आप में से कितने लोगों को सैयदुल अस्तगफार आता है? अगर आपको नहीं आता तो आप इसको याद कर लें, और जिन बहनों को आता है तो वो बहनें जो है वो बड़ी ही खुशकिस्मत है कि वो बहनें फिर उसको पढ़ना अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, और आप आइंदा क्लास में सुनाएं भी सैयदुल अस्तगफार। اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको, ये जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, इसको सैयदुल अस्तगफार जो है वो कहा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफार किया करते थे। आपका इरशाद है कि मेरे दिल पर भी सुस्ती तारी होती है, लेकिन मैं दिन में 100 100 मरतबा अस्तगफार करता हूँ, और एक महफिल के अंदर आप 100 100 मरतबा ये कलमाए अस्तगफार जो थे सुना करते थे। रसूल अल्लाह पढ़ते और सहाबा सुनते कि रब्बि अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर। और ये क्या है, ये सैयदुल अस्तगफार के अलावा ये और भी अस्तगफार के जो है वो कलमात हैं। तो क्या करना चाहिए, ये जो हमें अस्तगफार की दुआएं मिलती है ना, इसको जो है वो पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि आप जो है वो बहुत सी दफा पढ़ती हैं कि अस्तगफार करें अस्तगफार करें, लेकिन ये कि क्या फिर अपनी अमली जिंदगी में हम अस्तगफार को शामिल करते हैं? क्योंकि जब अस्तगफार को शामिल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे गुनाह जो है वो माफ होते चले जाएंगे। और इस सिलसिले में जो है वो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी जो दुआएं हैं उसको अपना मामूल बनाना चाहिए, क्योंकि अस्तगफार करने से इंसान के गुनाह वो समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, समंदर के पानी के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन गुनाहों को जो है वो माफ कर देता है। तो पहली चीज क्या है कि अस्तगफार करें, और दूसरी चीज क्या है, सुम्मा तूबू इलैही, और उसी की तरफ जो है वो पलट आए, अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये दो बातें बहुत अहम है, ये तौबा के दो अहम सुतून है। फिर क्या होगा, ये दो काम करने से अल्लाह क्या देगा, युमत्तेउकुम मताअन हसनन, फिर अल्लाह तुम्हें जो है वो अच्छा सामान जिंदगी देगा, इला अजल मुसम्मन, एक खास मुद्दत तक, व युति कुल्लजी फजलिन फजला, और हर साहिब फजल को इसका फजल अता करेगा, व इन तवल्लहु, और अगर तुम मुंह फेरते हो, फइन्नी अखाफु अलैकुम अजाब यौमिन कबीर, तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूं। तो आप देख लीजिए कि अब यहां पर जो है वो छठी बात अस्तगफार, सातवीं तौबा, और आठवीं बात जो है वो क्या है कि जो ये काम करेंगे तो अल्लाह उनको एक मुकर्रर मुअय्यन मुद्दत तक बेहतरीन समाने जिंदगी और मजीद अपना फजल जो है वो अता करेगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि नौवीं बात यह है कि अगर तुम पलट गए तो तुम्हारे बारे में मुझे एक बड़े खौफनाक दिन के अजाब का अंदेशा है, कि वो अजाब का दिन होगा, वो कयामत का दिन होगा, और वो बहुत बड़ा अजाब होगा, अजाब यौमिन कबीर, बहुत बड़ा अजाब होगा। इल्लाही मर्जियकुम, तुम सबको अल्लाह ही की तरफ पलटना है, ये दसवीं बात है। और यहां अगर किसी को इस बात पर यकीन हो जाए कि मुझे अल्लाह की तरफ जाना है, पलटना है, तो उसकी जिंदगी संवर जाए, और वो अल्लाह भी कैसा, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो सब कुछ कर सकता है। आयत नंबर 3 में मतान हसनन, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतान हसनन जो है इसकी दो किस्में होती हैं। ये जो चंद रोजा सामान्य जिंदगी है ना, इसको मतान हसन कहते हैं। मता जो है इसका मतलब है कि दुनिया की जिंदगी से फायदा उठाना, और हसन जो है इसका मतलब है कि अच्छा फायदा उठाना। तो मतान हसनन के मानी है अच्छा सामान, नेक सामान, अच्छा फायदा उठाना। तो अब आप देखें कि सामान्य दुनिया को कुरान आम तौर पर मताए गुरूर कहता है, धोखे का सामान कहता है। ये अजीब बात है कि यहां इसको मताए हसन करार दिया। तो याद रखें कि मताए गुरूर कब बन जाता है, कि वो सरो सामान जो खुदा से फिरे हुए लोगों को फितने में डालने के लिए दिया जाता है। वो लोग जो आखिरत से गाफिल होकर दुनिया के माल से फायदा उठाते हैं और अपने आप को दुनिया में गुम कर देते हैं, दुनिया के बारे में फितने में मुब्तला हो जाते हैं और समझते हैं यही सब कुछ है दुनिया की जिंदगी, हलाल हराम की तमीज नहीं करते, तो ये माल जो है उनके लिए मताए गुरूर बन जाता है। उनको कुरान फिर कहता है मता उन गुरूर। दूसरे वो लोग हैं जो कि ये चंद रोजा जो जिंदगी का सामान है, जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर अल्लाह के शुक्रगुजार बनते हैं, अल्लाह के और बंदों के हुकूक अच्छी तरह अदा करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल को जब इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे कामों पे, नेकी को फैलाने के लिए, शर को रोकने के लिए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो कुरान उनको मताउन हसनुन कहता है, कि फिर अल्लाह ताला उन्हें जो है वो मताए हसन जो है वो अता करेगा। तो प्यारी बहनों, यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है कि आपके पास जो भी माल है वो आप इस्तेमाल के लिहाज से उसे मताउन गुरूर बना रही हैं या मताए हसन। तो मताए हसन जो है वो कब बनेगा, जबकि जो कुछ आपके पास है आप उस पर कनात करें, जो कुछ मुयस्सर है उस पर मुतमिन हो जाएं, हलाल पर राजी हो हराम पर नहीं, जो मौजूद है उस पर खुश हो जाएं और जो मौजूद नहीं है उस पर गम ना करें, और फिर जो कुछ मिल गया है तो उसे अल्लाह के अहकाम के मुताबिक खर्च करें। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला कहते हैं मताए हसन से मुराद है कि इंसान की तवज्जो मखलूक से हटकर खालिक पर जम जाए, और बाज कहते हैं कि मताए हसन ये तब बनता है जब इंसान जो कुछ उसके पास है उस पर कनात कर लेता है, और मताए गुरूर का बनता है कि जब इंसान का पेट नहीं भरता, जब इंसान कहता है और 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 दूसरों का भी हिस्सा जो है वो लेना चाहता है, दूसरों के हुकूक अदा नहीं करता, जकात देना नहीं चाहता। तो अब आपने सोचना है कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो मताए हसन है या मताए गुरूर, मताए हसन है या मताए गुरूर। तो अब ये एक क्वेश्चन मार्क है जो आपके पास है, क्योंकि काफिरों के लिए, मुनाफिकों के लिए, दुनिया परस्तों के लिए मालो दौलत मताए गुरूर है, और मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, कनात करने वालों के लिए जो अल्लाह और अल्लाह के हुकूक अदा करते हैं, तो ये माल जो है ये मताए हसन है। अब तौबा इस्तिग़फ़ार के नतीजे में अल्लाह क्या देगा, मतान हसनन ये देता जाएगा और लोग वो शुक्रगुजार बनते चले जाएंगे। कब तक, इला अजली मुसम्मन, एक मुकर्रा मुद्दत तक, और अल्लाह हर साहिब फजल को इसका फजल अता करेगा। कि इसको आप हाईलाइट करें, वयूति कुल्लजी फजलिन फजला, और हर साहिब फजल को इसका फजल अता करेगा। मुफस्सरीन कहते हैं इसके मानी है कि जो शख्स इखलाक और अमल में जितना आगे बढ़ेगा अल्लाह भी उसको इतना ही बड़ा दर्जा अता करेगा। अल्लाह के यहाँ बुराई की जो है वो ऐसा नहीं है कि बुराई की जो है वो कदर ली जाए और भलाई की ना कदरी की जाए, नहीं, बल्कि जैसा कोई अमल करेगा वैसे ही अल्लाह उसके मुताबिक उनको रुतबा दर्जा जो है वो अता करेगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि ऐलान कर दो कि लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से जो है वो डरता हूँ। इल्लल्लाही मर्जियुकुम व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, तुम फिर सबको लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और बड़े दिन से मुराद कयामत का दिन है। ये आयत नंबर जो 5 है इसके बारे में मुफस्सरीन में इख्तलाफ है। एक राय तो ये है कि ये उन मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई जो गलबे हया की वजह से कजाए हाजत और बीवी से हम बिस्तरी के वक्त नंगा होना पसंद नहीं करते थे कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, इसलिए ऐसे मौकों पर वो शर्मगाह को छुपाने के लिए अपने सीनों को दोहरा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात को अंधेरे में जब वो बिस्तरों में अपने आप को कपड़ों में ढांप लेते हैं तो उस वक्त भी वो उनको देखता और इनकी छुपी हुई और अलानिया बातों को जानता है। तो मतलब ये है कि शर्म और हया का जज्बा अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इतना गुलू और अफराद भी सही नहीं, इसलिए कि जिस जात की खातिर वो ऐसा करते हैं इससे तो फिर भी छुप नहीं सकते, फिर इस तरह के तकल्लुफ का क्या फायदा। तो एक राय तो ये की जाती है कि तुम जो कुछ भी करते हो तो अल्लाह से अपने आप को छुपा नहीं सकते। दूसरी एक और रवायत है, ये अखनस बिन शुरैक के बारे में नाजिल हुई जो रसूल अल्लाह से जब मिलता तो चिकनी चुपड़ी बातें करता और दिल में आपकी दुश्मनी छुपाए रखता, लेकिन अक्सर मुफस्सरीन ने आयत की पहली तफसीर को तरजीह दी है कि गलबा हया की वजह से जो लोग कजाए हाजत और बीवी से हम बिस्तरी के वक्त नंगा होना पसंद नहीं करते थे तो उनके बारे में अला खबरदार इन्नहुम यसनूना सुदूरहुम, के ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं। यहाँ पे यसनूना का लफ्ज अहम है, इसका रूट है सा नून या, इसका मतलब होता है फेरना, मोड़ना, लपेटना। तो यसनूना ये लपेटते हैं, ये मोड़ते हैं, ये फेर लेते हैं, क्योंकि ये भी होता है ना कि इंसान जो है जैसे अपनी चादर संभालता है, अपने ऊपर लपेटता है, चल देता है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये अपने सीनों को मोड़ते हैं। सीने कब मोड़े जाते हैं? जब आदमी किसी बात को गुरूर और नफरत से सुनना ना चाहे तो मोंडे झटक कर और सीना मोड़ कर वहां से चल पड़ता है। तो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं, यस नूना सुदूरा हूं यस्तखफू मिनहू, ताकि वो इससे छुप जाए। वो किससे छुप जाए? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे तो अहले मक्का आपकी दावत को सुनना नहीं चाहते थे, आपको आते देखते तो रुख बदल लेते, कपड़े की ओट में मुंह छुपा लेते और सीना मोड़ कर चल पड़ते कहीं आमना सामना ना हो जाए। तो हक का सामना नहीं करना चाहते थे ना, लियस्तखफू मिनहू, ताकि वो इससे अपने आप को जो है वो छुपा लें। अल्लाह खबरदार हीना यस्तखशूना सियाबहुम, कि जब ये कपड़ों से अपने आप को छुपाते हैं, ही ना जब यस्तक्षुना गैन शीन, या गशी का मतलब होता है ढांप लेना, छुपा लेना। सियाबहुम सौप से है, सावोबा सौप कपड़े, जब अपने कपड़ों से ये अपने आप को छुपाते हैं। या लमुमा युसिरुना वमा योलेनून, कि वो जानता है जो कुछ ये जाहिर करते हैं और जो कुछ ये छुपाते हैं। इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, बेशक वो जानने वाला है दिलों के राजों का, वो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में है। तो ये जो आयत है, इस आयत के बारे में दो बातें मैंने आपके सामने रखी। एक तो यही बात कि जैसे सहाबा जो थे रफाए हाजत के वक्त या अपनी बीवियों से सोबत करते वक्त आसमान की तरफ सतर खोलने से अल्लाह से शर्माते और शर्म के मारे झुके जाते, तो ये एक ये आयत नाजिल हुई कि वो अल्लाह जिससे तुम्हें हया आती है, तो क्या जिस वक्त तुम कपड़े उतारते हो पहनते हो उस वक्त तुम्हारा जाहिर और बातिन अल्लाह के सामने नहीं होता? वो इंसान तो अल्लाह से किसी वक्त भी छुप नहीं सकता। तो जो जिंदगी की बेसिक नीड्स हैं, जरूरियात जिंदगी हैं, फिर उसमें गुलू नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो पता चलती है कि ये आयत अल्लाह के इल्मे मुहीत की वुसअत को बयान करती है कि वो इंसान की खुली छुपी सारी चीजों को जानता है, दिलों के इरादों तक भी। और अहले मक्का का जो रवैया था कि रसूल अल्लाह को देखकर चेहरे अपने कपड़ों में छुपा लेना, रुख बदल लेना, चल पड़ना, लपेट लेना, जो उनकी मुतकब्बिरीन के तकबूर की जो है तस्वीर यहाँ पे पेश की गई है। या लमुमा युसिरूना वमा योलिनून, अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, और वो तो इन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में है। तो इससे ये बात पता चलती है कि हमें भी अपने अमलों पर, अपनी हरकतों सकनात पर, अपनी नियतों पर अल्लाह के अलीम और बसीर होने के पहरे बिठाने चाहिए, डरना चाहिए कि अल्लाह सब कुछ जो है वो जानता है। फिर देखिए आयत नंबर 6 सूरत हूद, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपना मजीद तारुफ करवाते हैं कि अल्लाह ही राजिक भी है। फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाही रिज़्कुहा व यालमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। वमा मिन दाबतिन वमा मिन, फरमाया के और नहीं कोई दाबतिन जानदार, असल में दाल बा बा इसका रूट है और इसके मानी है रींग कर चलने वाले, रींग कर चलने वाले। तो दाबतिन मुराद है जमीन पर चलने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, छोटी बड़ी, बहरी बरी, हर तरह की जो भी जानदार मखलूक है तो उनकी जरूरियात कौन पूरी करता है? अल्लाह पूरी करता है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी, और नहीं कोई चलने वाला जमीन पर, इल्ला अल्लाही रिस्कुहा, मगर उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है और वो जानता है। वह यालम, और वो जानता है, मुस्तकर रहा जहां रहना है उसे, वह मुस्तौदा और जहां सौंपा जाना है। अब आप देखिए कि मुस्तकर रहा और मुस्तौदा जो है, मुस्तकर रहा का रूट है पाफ रा, ये पहले भी आप पढ़ चुकी हैं। ये कहते हैं जाए करार को, करारगाह जहां इंसान रहता है। वह मुस्तौदा, ये जैसे स्टोर या गोदाम को कहते हैं जहां इंसान जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारता है, जैसे मुस्तकर, वो मुस्तकर है जैसे जमीन, और जहां इंसान मरने के बाद सौंपा जाएगा जैसे कब्र, स्टोर, गोदाम वगैरह, जहां उसको दफन कर दिया जाएगा। तो अल्लाह को पता है कि इंसान को दुनिया में, जमीन में चल फिर कर कहां रहना है, कहाँ उसका ठिकाना बनेगा, और इंसान हो या हैवान, अल्लाह को सबका मुस्तकर भी पता है और उसका मुस्तौदा भी पता है कि कहाँ वो जिएगा और कहाँ वो मरेगा। और वो हर एक को उसकी रोजी जो है वो पहुंचाता है, वो जहां कहीं भी है। जैसे आप देख लीजिए कि अल्लाह का ये रोजी पहुंचाने का जो इंतजाम है ये कितना बेहतरीन है कि जो पत्थरों के अंदर मखलूक है अल्लाह उनको भी पहुंचाता है, जो गारों के अंदर है, जो जमीन के अंदर है, कीड़े मकोड़े, चींटियां, हर एक को अल्लाह जो है वो रिस्क जो है पहुंचाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करते जैसा करने का हक है तो तुमको भी इसी तरह रिस्क दिया जाता जिस तरह परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह के भूखे जाते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि इंसान जो है वो कुछ भी ना करे और हाथ पांव तोड़कर बैठ जाए और ये सोचे कि मेरी रोजी, मेरा रिस्क तो अल्लाह के जिम्मे है और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह मेरा रिस्क जो है वो पूरा करेगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि कोशिश करनी चाहिए, हाथ पांव हिलाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और बाकी ये कि जो भी आप कोशिश करेंगी तो उसके मुताबिक फिर अल्लाह ताला जो है वो हर एक को रिस्क जो है वो देगा। तो आपने जो पहली आयत, इससे पहले वाली आयत जो थी आयत नंबर 5 में अल्लाह के इल्म की वुसअत पढ़ी ना, अब यहाँ पे भी अल्लाह के इल्म का हाल बताया जा रहा है कि एक एक चिड़िया का घोंसला, एक एक कीड़े का बिल उसको पता है, और वो चिड़िया के घोंसले में, कीड़े के बिल में अल्लाह ताला हर एक को जिंदगी का सामान पहुंचा रहा है। उसको पता है कि कौन कहाँ रहता है, तो कोई भी अल्लाह से छुप नहीं सकता। हर एक के रिस्क का इंतजाम जो है वो अल्लाह ने कर रखा है, कुल्लुन फी किताब मुबीन, और सब कुछ जो है वो किताबे मुबीन में दर्ज है, महफूज है। किताबे मुबीन से मुराद क्या है? लोहे महफूज। और अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को जो कुछ मिलने वाला है वो लोहे महफूज में जो है वो लिख रखा है। अब इस सिलसिले में आप देख लें कि हमें हदीस से भी ये बात पता चलती है, बुखारी और मुस्लिम की तवील हदीस है, और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया कि इंसान अपनी पैदाइश से पहले मुख्तलिफ दौर से गुजरता है जबकि उसके अज़ा की तकमील हो जाती है। तो अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म देते हैं जो उसके मुतल्लिक चार चीजें जो है वो लिखता है, नंबर एक उसका अमल, नंबर दो उसकी उम्र, नंबर तीन कहाँ मरना है, और नंबर चार कहाँ उसको दफन होना है, यानी कहाँ मरना है और फिर उसके बाद दफन होना है, और नंबर चार इसका रिज कितना और किस तरीके से उसको जो है वो मिलेगा। और आप देख लें कि पैदा होने वाला बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपना रिस्क जो है वो साथ लेकर आता है। तो यहाँ पर ये अल्लाह की जो कुदरते कामिला है इसका जो है वो तारुफ करवाया जा रहा है। आयत नंबर 7, वहुवल्लज़ी, और वो अल्लाह ही है, खलक़स समावाती वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन, जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फकाना अर्शहु अलल माई, और उसका अर्श जो था वो पानी पर था। आसमान और जमीन को पैदा करने से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। अब ये बात हमें सही हदीस में भी मिलती है, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तखलीक से 50,000 साल पहले मखलूकात की तकदीर लिखी, उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इसे सही मुस्लिम और सही बुखारी ने रवायत किया है। और ये जो आयत का हिस्सा भी हमने पढ़ा ये आयाते मुतशाबिहात में से है, और इसकी सही हकीकत जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बहरहाल ये आसमान और जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिनों में पैदा कर दिए, और वो 6 दिन गिनती के वो दिन नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं, बल्कि ये अल्लाह के दिन है। और आप ये बात पहले भी पढ़ चुकी हैं कि हमारा गिनती का जो 1 दिन है अल्लाह के हाँ जो है वो कई कई 1,000 साल का दिन है। अच्छा, ये जो पैदा सब कुछ किया गया क्यों, इसका मकसद बताया जा रहा है, ये बात है जिसको याद रखना है। इसको आप सर्कल कर लें, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, के आसमान और जमीन को पैदा करने का मकसद क्या है? लियबलुवकुम, ताकि तुम्हें आजमा कर देखे, ताकि तुम्हारा इम्तहान ले, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। अब आप देखें कि ये नहीं कहा कि अय्युकुम अक्सर हुआ माला, ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है, अच्छे अमल करने वाला कौन है। और आहसनू जो है वो अफलू के वजन पर है, इसके मानी है दी बेस्ट, बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। तो यहां पर ये आयत का हिस्सा जो है वो जिंदगी का मकसद बता रहा है कि ये कायनात, ये जिंदगी जो है ये किसी खलंडरे का घरोंदा नहीं है, जी फैलाने बहलाने का खिलौना नहीं है, ये इसको दुनिया को बनाने का एक संजीदा मकसद है। और वो मकसद ये नहीं है कि कौन ज्यादा अमल करता है, बल्कि फरमाया कि कौन ज्यादा अच्छे अमल करने वाला है, बेहतरीन अमल करने वाला है। इस सिलसिले में मुफस्सरीन कहते हैं कि अच्छा अमल वो होता है, नंबर एक, जो सिर्फ रजाए इलाही की खातिर हो। इसे आप नोट कर लें। अच्छा अमल कौन सा होता है, आसनु अमल किसे कहते हैं? नंबर एक, जो रजाए इलाही की खातिर हो, और नंबर दो, जो सुन्नत के मुताबिक हो। इन दो शर्तों में से अगर एक भी शर्त ना हो तो अमल कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, उसकी अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। तो जरूरी है कि ऐसे अमल किए जाएं जिनका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ रब की रजा हो। और इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक वाकया पेश करती हूँ। आप देखिए कि मसलन जो है वो आप कोई भी अमल करते हैं तो आपकी अमल करने की नीयत क्या है, आपका मकसद क्या है। जैसे एक साहबी अपना घर बनाते वक्त उन्होंने मस्जिद की तरफ खिड़की रखी, तो आपने उसे पूछा ये खिड़की यहाँ किस ख्याल से रखी? उन्होंने कहा ताकि हवा आती रहे। तो आपने फरमाया अगर तुम ये नीयत कर लेते कि इधर से अजान की आवाज आए तो तुम्हें इसका सवाब भी मिल जाता, और हवा की आमदोरफ्त तो बहरहाल होनी थी। तो असल चीज क्या है कि जो भी काम किया जाए तो रब की रजा के लिए, और जो है वो सुन्नत के मुताबिक जो है वो किया जाए। तो छोटे छोटे जो अमल हैं वो अल्लाह के यहाँ उनकी बहुत ही जो है वो बड़ी कीमत जो है वो लगेगी। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने ताबईन से कहा कि तुम रसूल अल्लाह के सहाबा से ज्यादा रोजे रखते हो, ज्यादा नमाजें पढ़ते हो, ज्यादा दौड़ धूप करते हो, मगर वो तुमसे बेहतर थे। लोगों ने सवाल किया, अबू अब्दुर्रहमान, ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की कुनियत थी, जरा इसकी वजाहत तो करें कि वो हमसे किस तरह बेहतर थे जब रोजे नमाज में हम आगे हैं। फरमाया वो दुनिया से बहुत ज्यादा बेनियाज और आखिरत के बहुत ज्यादा तलबगार थे। तो आसनु अमल क्या है कि आखिरत की फिक्र करना, रब की रजा की फिक्र करना। जैसे बहुत से अमल हैं आज की दुनिया में, कहते हैं कि फलां कर रहा है और फलां कर रहा है, बाप दादा कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं, सोसाइटी कर रही है, पीयर प्रेशर है, दोस्त कर रहे हैं, लेकिन अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो है उसकी उसमें रजा नहीं है, अल्लाह की रजा की खातिर नहीं है, वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अनु से लोगों ने पूछा कि क्या रसूल अल्लाह के सहाबा हंसते भी थे? उन्होंने कहा हाँ वो हंसते थे, मगर ईमान उनके दिलों में पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था, वो अल्लाह से बेखौफ होकर नहीं हंसते थे। तो प्यारी बहनों, आसनु अमला क्या है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, आखिरत के दिन की फिक्र, और अपनी जिन्नत जिंदगी को सुन्नत से मुजयन करना। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। वला इन कुलता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौती, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इनसे कहते हो, वला इन कुलता, और अगर तुम कहते हो इन्नकुम मबऊसून, कि बेशक तुम जो है वो उठाए जाओगे। बासा जो होता है इसके मानी है बा एन सा के मानी है उठाया जाना, कि बेशक तुम्हें उठाया जाएगा, मिन बादिल मौती, मौत के बाद, कि जब तुम लोगों से कहते हो, मक्का वालों को कहते हो कि मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, लयकूलन लजीना कफरू इन हाजा इल्ला सिहरु मुबीन, तो मुनकरीन फौरन बोल उठते हैं, लयकूलन, जरूर ब जरूर ये कहेंगे, अल्लजीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, कि ये तो सरी जादूगरी है। अब वो क्या कहते थे कि जब उनसे कहा जाता था कि मरने के बाद तुम्हें जिंदा किया जाएगा, तुम्हें उठाकर खड़ा किया जाएगा, तुम्हारा हिसाब किताब होगा, तो काफिर फौरन कहने लगते थे कि ये तो जादूगरी है। फौरन जो थे कहते थे ये तो सरी जादू है। फौरन जो थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का और आखिरत की जजा और सजा का इनकार करते थे। तो अब यहां पर जो है ये उनकी हालत बताई जा रही है कि आखिरत को झुठलाते हैं, और जो तुम कुरान पेश करते हो तो उसकी सदाकत को कबूल करने की बजाय उसको जादूगरी करार देते हैं ताकि अवाम को धोखा दे सकें, ताकि लोग कुरान और पैगंबर की बातों से मुतासिर ना होने पाए। अब आप देखिए कि आगे आयत नंबर 8 जो है इसमें फरमाया, वलाइन अखरना अनहुमुल अजाबा, और अगर हम एक खास मुद्दत तक इनसे अजाब को टाल दें, इला उम्मतिन मादूदा, इला उम्मतिन, और यहां पर जो उम्मत का लफ्ज है इसके मानी है मुद्दत के, मादूदतिन मुय्यन, और अगर हम इन पर एक मुय्यन मुद्दत तक, एक खास मुद्दत तक इनसे अजाब जो है वो टाल दें, रोक दें, लयकूलुन्ना, तो ये जरूर ब जरूर कहेंगे, मा यह बिसु, इसे कौन सी चीज रोक रही है। हबस का मतलब होता है ना, जैसे आप कहती हैं हवा में, मौसम में हबस है, हवा रुकी हुई है, तो जब अजाब इन पर रोक दिया जाता है तो फिर कहते हैं कि इसे किसने रोक दिया है, बजाय इसके कि वो इकरार कर लें बल्कि इनकार करते हैं। तो आयत नंबर 7 से लेकर 11 तक अहले मक्का और मुनकरीन जो थे, जजा और सजा को झुठलाते थे, अजाब का मजाक उड़ाते थे, उनका जिक्र किया जा रहा है। या यकूलुन्ना, तो जरूर ब जरूर कहते हैं, मा यह बिसहू, कि आखिर इसे किस चीज ने रोक रखा है, अला खबरदार, यौम यातीहिम, जिस दिन वो आएगा, लैसा मसरूफन अनहुम, तो जब अजाब आएगा, जब कयामत आएगी, तो लैसा मसरूफन, तो टाला नहीं जाएगा। स्वाद राफा, इसका मतलब होता है फेर देना, सर्राफा युसर्रेफू, फेर देना, तो लैसा मसरूफन, टाला नहीं जाएगा, अनहुम, इनसे अजाब इनसे हटाया नहीं जाएगा। वहा का बेहिम मा कानू बेही यस्ताजेऊन, और वही चीज उनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। तो क्या चीज है जो इनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे, तो वो कयामत है, वो अल्लाह की जो है वो सजा है, वो आखिरत की पकड़ है, को इसका ये लोग मजाक उड़ाते थे और यही जो है वो इनको आकर हर तरफ से जो है वो घेर लेगी। तो ये जो हाका है ना, ये बहुत ही अहम लफ्ज है और इसके मानी है कि घेर लेना, हर तरफ से घेर लेना, इसका रूट है हा या काफ। तो अल्लाह का अजाब जो है वो उनको घेर लेगा, क्यों, ये कयामत का मजाक उड़ाते, तो वही कयामत इनको आकर हर तरफ से जो है वो घेर लेगी। फिर आप देखिए कि आयत नंबर जो 9 है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान जो है इसकी जो है वो जो फितरत है, इंसान की जो आदत है वो बताते हैं, वलैन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन, अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, अज़क़ना ज़ौक से है जिसका मतलब है चखाना, और अगर हम चखा दे इंसान को अपने पास से रहमत नेमत, सुम्मा नज़ाना मिन्हु, और फिर उसको इससे महरूम कर दे, नज़ाना जो है फिर छीन दे, छीन ले इसको इससे, तो नून ज़े आयन जो है किसी चीज को जो है वो छीन लेना, किसी चीज को सख्ती से जो है वो ले लेना, सुम्मा नज़ा नाहा मिन्हु, फिर इंसान से वो जो नेमत जो दी थी अल्लाह ताला ने, फिर इंसान से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उसे छीन ले, उसे ले ले, इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो इंसान जो है मायूस हो जाता है, लयऊसुन या हमजा सीन ना उम्मीद होना, तो इंसान मायूस होता है, कफूर नशुकरी करने लगता है। तो ये है इंसान की जो है वो एक हालत, ये नापसंदीदा सिफत इंसान में पाई जाती है कि नेमत देकर जब अल्लाह ताला छीन लेता है तो इंसान ऐसे मायूस होता है कि जैसे कभी दिन बदलेंगे नहीं ना, और मायूसी का, नाउमीदी का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है कि पता नहीं आने वाले दिनों में हालात ऐसे ही रहेंगे। वलैन अज़क़नाहु नअमा, और अगर हम जो है वो चखा दें इसको, नामा आ नेमत नून आयन मीम, ये इसम जिन्स है, और अगर हम इसको जो है वो चखा दें नेमतें बादा दर्रा तकलीफ के बाद, अगर मुसीबत के बाद तकलीफ के बाद इन्हें नेमत का मजा चखा दें, मस्सत हु जो पहुंची उसे, यानी जो तकलीफें परेशानियां उसे पहुंची, तो उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम नेमत का मजा चखा दे, लयकूलन्ना तो जरूर बजरूर कहेंगे, ज़हबत सय्यातु अन्नी कि मेरे सारे दिल दर पार हो गए, ज़हबत सय्यातु जाती रही बुराइयां, सय्यातुन वाहिदा सय्यात इसकी जमा है, अन्नी मुझसे कि मेरी सारी दुख तकलीफे परेशानियां मुझसे दूर हो गई, इन्नहु लफरहुन फखूर बेशक इंसान जो है लफरहुन इतराने वाला है, फखूर फखर करने वाला है। तो ये जो है ना कि इंसान के अंदर जो नशुकरी पाई जाती है, तो नशुकरी क्यों पाई जाती है, ये उसके इसका ताल्लुक उसके माजी से है और उसके हाल से है कि जब अल्लाह उसको रिस्क देता है फजल देता है तो शुक्र गुजारी की बजाय जो है वो बदमस्ती में मुब्तला होता है, नशुकरी करता है, मजाक उड़ाता है। अब यहाँ पे ये दो रवैये बताए जा रहे हैं कि मुसीबत आती है तो समझता है कि कभी अच्छे दिन आएंगे नहीं, मायूस हो जाता है, ला यऊसुन कफूर, नेमतें मिलती हैं तो लफरहुन फखूर में मुब्तला हो जाता है। तो लफरहुन फखूर जो है ये क्या चीज है, इसका मतलब है कि इंसान जो है वो इतराता है, अपने आप को बड़ा समझता है और नेमते पाकर अल्लाह का नशुकरा बन जाता है, लफरहुन फखूर। ये वो सिफात है कि इंसान जो है वो नेमते पाकर फिर अल्लाह की तरफ झुकने की बजाय अपने आप को बड़ा समझने लगता है, वो ये भूल जाता है कि ये नेमते जो है इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो अता की हैं। तो यहाँ पर मायूसी और फरेहुन फखूर के बजाय क्या करना चाहिए, अल्लाह का मायूसी की बजाय अल्लाह की तरफ से उम्मीद रखनी चाहिए कि दिन बदलेंगे भी। दूसरी बात ये पता चलती है कि मुसीबत आने पर शुक्र करना चाहिए, मुसीबत आने पर सब्र करना चाहिए, और जब मुसीबत आए तो सोचना चाहिए कि कभी जब अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा था तो तब मैंने उस वक्त क्या शुक्र किया था, और अगर अब अल्लाह मुझे आजमा रहा है तो अब गफलत में मुब्तिला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंसान की तबीयत की जो गैर संजीदगी है, जो इंसान की तबीयत में जहनी तवाजुन नहीं होता, यहाँ पे उसको जो है वो बताया जा रहा है कि तंगी तुर्शी में हिम्मत हार देना और नेमते मिलने पर गाफिल और मगरूर बनकर शेखियां बिगाड़ना, ये जो है एक मुसलमान का जो है वो तुरा इम्तियाज नहीं है। तो ये जो आयत नंबर 9 और आयत नंबर 10 जो है इसमें बताया जा रहा है कि मायूसी नशुकरी की बजाय, कफूर जो है ये नशुकरी है, लायूस जो है ये मायूसी है, और फरेहन फखूर इतराना और फखर करना। तो इसकी बजाय फिर क्या करना चाहिए कि अल्लाह का जो है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आने पर सबर करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जब नेमतें मिलती हैं ये भी एक आजमाइश है, एक है ये सुख की आजमाइश है, और बुजुर्ग कहते हैं कि हमें जब दुख से आजमाया गया तो हम उस पर पूरा उतरे, लेकिन जब सुख की आजमाइश में हम डाले गए तो हम उस पर पूरा ना उतर सके। तो सुख की आजमाइश ज्यादा सख्त थी क्योंकि हमें ख्याल ही नहीं आया कि इसमें अल्लाह जो है हमें आजमा रहा है। तो प्यारी बहनों, जैसे सुख की आजमाइश से मुराद क्या है, सेहत मिल जाए, फरागत हो, दौलत की कसरत हो, माल हो, औलाद हो, बहुत कुछ हो और इंसान अल्लाह को जो है वो भूल जाए, तो सुख की आजमाइश में कितना इंसान अल्लाह को याद रखता है, और दुख की आजमाइश में फितरी तौर पर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो भी फिक्र गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि उसे कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से इसकी गलतियां माफ कर देता है। सर दुख रहा है, कोई चीज आप कहीं रखकर भूल गई हैं, मिल नहीं रही है, परेशान हो रही है, चाबी रख दी है, पेन रख दिया है, ऐनक कहीं रख दिया है, ये तकलीफ है, इसमें भी गुनाह माफ हो रहे हैं। और दूसरी, अगर इस हदीस पर हमारा ईमान हो जाए کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو فیصلہ بھی کرتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے، اگر راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، آئیے اہل ایمان کا رویہ اختیار کریں، راحت ہے کہ فراغت، تنگی ہے یا مصیبت، بیماری ہے یا صحت، مال ہے یا نہیں، اولاد ہے یا نہیں، ہر حالت میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل جو ہے وہ اختیار کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں بتانے کے بعد پھر آیت نمبر 11 میں کیا کہا، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ جو بری صفات ہیں ان سے کون بچتے ہیں؟ اس ایپ سے اگر کوئی ہیں جو پاک ہیں تو کون؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور وہی ہیں جن کے لیے جو ہے وہ بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے قصور معاف کرتا ہے، ان کی بھلائیوں پر ان کو بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبر اور شکر جو ہے اس کی کیفیت میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک خاص واقعہ تھا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مطالبہ کیا، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مختلف قسم کی انہوں نے فرمائشیں کی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے یا تو آپ کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اس میں جو ہے کوئی تبدیلی کر دیں۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَعَلَّكَ تَارِكُن، فَاپَس لَعَلَّكَ لفظ جو ہے شاید کے لیے آتا ہے، پس شاید کہیں تم کا آپ، پس شاید شاید کہیں آپ، تارکن چھوڑ دینے والے ہیں، تارا کاف کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں، بعد ما یوحا الیکا، ان چیزوں میں سے کسی چیز کو، بعد بعض ما یوحا الیکا، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اس میں سے آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، وَدَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہوگا اسی سے دل تمہارا، اور اس بات پر آپ کا دل تنگ ہونے لگے۔ دائقن جو ہے اس کا روٹ ہے دعاد یا قاف، اور اس کا معنی ہے دیق، جیسے تنگ ہونا، تو دائقن تنگ ہونے والا، وَدَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، کہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنا چھوڑ دو یا تمہارا دل جو ہے وہ تنگ ہونے لگے۔ اَن يَقُولُوا کہ وہ کہیں گے، یعنی اہل مکہ کی یہ باتیں کہیں تمہارے دل کو تنگ نہ کر دیں یا تم وحی کی کسی بات کو چھوڑ نہ دو، کیونکہ مشرکین رسول اللہ کو یہ کہتے تھے کہ لولا انزل علیہ کنزن، کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، لولا انزل علیہ کنزن، یہاں پہ علیہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے کہ اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ تو یہی بات سورۃ الفرقان آیت 8 میں بھی ہے، انما انت نذیر، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں جب اہل مکہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سینہ تنگ ہو اور جو باتیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور وہ مشرکین پر گرا گزرتی ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ وہ انہیں سنانا پسند نہ کریں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ نذیر ہیں، آپ کا کام ڈرانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اور آپ کو وہ کرتے جانا ہے، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ جو ہے वो हर चीज का हवालादार है, बाकी आप अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि ये लोग जो कुछ भी करेंगे तो फिर अल्लाह ही इनको जो है वो पूछेगा। अम यकुलून अफ्तरा, क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है? इस तरह जो है इसके मानी है घड़ लेना। तो क्या ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को खुद घड़ लिया है? कुल फातू बे अशरे सुअर मिसले ही मुफ्तरायातिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए फातू तुम ले आओ बे अशरी सुअरिन 10 सूरतें। अशर जो है, अशर 10 को कहते हैं, सूरत वाहिद है और सुअरिन इसकी जमा है, तो सुअरिन मिसले ही इस जैसी 10 सूरतें तुम ले आओ, मुफ्तरायातिन घड़ कर। मुफ्तरातुन वाहिद है और मुफ्तरायात जो है ये जमा है, और घड़ी भी को कहते हैं ना। तो कहा जा रहा है कि अच्छा तुम ये कहते हो कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है, ये सूरत खुद घड़ी हुई है, अच्छा ये बात है, तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ। वदऊ, और तुम बुला लो, मनिस्तता, तुम जिसको तुम बुला सको, मिन दूनिल्लाही सवाए अल्लाह के, इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। तो तुम अल्लाह को छोड़कर मदद के लिए अपने माबूदों में से जिसे जिसे बुलाना चाहते हो बुला लो, ताकि वो तुम्हारी मदद करें सूरतों के घड़ने में, अगर ऐसा कर सकते हो, अगर तुम सच्चे तो करके देखो। फइल्लम यस्तजीबू लकुम, बस अगर वो फिर तुम्हारी मदद को ना पहुंचे, यानी अगर तुम्हारे वो जो माबूद हैं वो तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते, फालमू, तो बस खूब जान लो, अन्नमा उन्जिला बिइल्मिल्लाही, कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है, वल्ला इलाहा इल्लाहू, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फहल अन्तुम मुस्लिमून, फिर क्या तुम इस अमरे हक के आगे सरे तस्लीम खम करते हो कि तुम तो घर नहीं सकते? ये चैलेंज था ना जो अहले मक्का को दिया गया, क्योंकि वो कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान घर कर पेश करते हैं, किसी से सीख लेते हैं। तो कहा कि इनको कहो कि तुम भी कुरान पूरा नहीं, बस 10 सूरतें ऐसी बनाकर दिखा दो, और अगर ना बना सको तो याद रखना कि अल्लाह का नाजिल करदा कलाम है, फिर जो है तुम इसको कबूल कर लेना, और याद रखना कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फहल अन्तुम मुस्लिमून, तो फिर क्या तुम इस अमरे हक के आगे सरे तस्लीम खम करते हो? क्या तुम अतात इख्तियार करते हो? तो ये है अहले मक्का के एतराजात और उनका जवाब, कि वो एतराज करते थे और फिर जब उनको चैलेंज किया जाता था और वो चैलेंज को पूरा भी नहीं करते थे और फिर ईमान भी नहीं लाते थे। और आप देख लें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो दावा करना, तबलीग करना और अहले मक्का का इनकार करना, तो यहाँ पे दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबर की जो है वो तलकीन की जा रही है, और अहले मक्का के जो इतराजात हैं उनका जो है वो जवाब दिया जा रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की जा रही है कि इनके ये जो मुतालबात हैं, ये जो मौजजात के मुतालबात करते हैं, आप इसकी परवाह भी ना करें। और ये आयत नंबर 15 और जो 16 है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और हकीकत जो है वो बयान की है कि असल में अहले मक्का दुनिया के एतबार से बड़े अमीर थे, और वो ये समझते थे कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं इसलिए हमें अल्लाह ने खूब नवाजा है। तो कहा कि मन काना युरीदुल हयात दुनिया वजीनतहा नुवफ्फे इलैहिम आमालहुम फीहा वहुम फीहा ला युबखसून, के मन काना युरीदुल हयात दुनिया, कि जो कोई चाहता हो दुनिया की जिंदगी, वजीनतहा और इसकी जेबो जीनत, तो जो शख्स जो है दुनिया की जेबो जीनत और इसका माल चाहता है, नुवफी इलेहिम, तो हम पूरा देंगे इसे, अमालहुम फीहा, इनके अमाल का बदला दुनिया ही में। तो जो लोग दुनिया की जिंदगी और इसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं, तो उनकी जो कुछ भी कारगुजारी है, अमल है, उनका बदला हम दुनिया में देते हैं, وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کمی نہیں کی جاتی. با خاصین، اس کا مطلب ہے ظلم سے کم کرنا، حق تلفی کرنا، جس کا کچھ بنتا ہو پھر اس کو وہ نہ دیا جائے. کہا کہ پھر ہم اس کو پورا پورا دنیا میں دیتے ہیں اور اس میں بالکل جو ہے وہ کمی نہیں کرتے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا. سواد نون عین جو ہے اس کے معنی ہے بنانا، کرنا، جیسے صنعت کاری بھی اسی سے ہے نا. اور حبیتا جیسے زہریلی گھاس وغیرہ کھا کر کسی کا جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ پھول جانا، اس کا مر جانا، اسی طرح وہ حبیتا کسی کی زندگی کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں. وہ حبیتا ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا. وباطل ما کانوا یعملون، وباطل، اور سب ضائع ہوا. ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. اس ان دو آیات میں ایک بڑی اہم حقیقت جو ہے وہ بتائی گئی ہے. کیونکہ جو منکرین تھے، جو کافر تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں جو ہیں ہم اچھے عمل کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بہت دیا ہوا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے دنیا ہی چاہی، اس لیے ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا. ان کے ساتھ اللہ کوئی کمی نہیں کرتا، لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نظروں میں صرف دنیا تھی، آخرت انہوں نے کبھی چاہی نہیں تھی، اس لیے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ظاہری طور پر بعض عمل جو بہت اچھے اچھے بھی ہیں، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وہ سارے ان کے ضائع ہو جائیں گے، اور ان کا کیا دھرا سب کا سب جو ہے وہ دنیا ہی میں جو ہے وہ رہ جائے گا، کیونکہ وہاں پہ ان کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہوں گے. تو اصل میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے، جیسے بعض اوقات اب اپنے ارد گرد کی دنیا میں بھی دیکھتی ہیں کہ جیسے کافر ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ڈونیشن میں، خدمت خلق میں بہت آگے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہاسپٹلز ہیں، اور کینسر ہے یا بیماریاں ہیں، اور لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو اس میں یہ لوگ جو ہیں، جو غیر مسلم بھی ہیں، بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور بعض مسلمان بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی یہ اچھے ہیں نا. تو اس آیت کی روشنی میں، ان آیات میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہر عمل کے مقبول اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو، وہ اللہ کی خاطر کیا گیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو. جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے تمام اعمال اور اخلاق ایک بے روح ڈھانچے کی شکل میں ہیں. ظاہری طور پر شکل بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس لیے آخرت میں اس کا کچھ بھی اجر جو ہے وہ نہیں ملے گا. لیکن اللہ عادل ہے نا، اس نے عمل کو بالکل ضائع نہیں کیا. کرنے والے کے پیش نظر دنیا تھی، اللہ نے اس کو دنیا میں خوب عزت دی، خوب دولت دی، انہوں نے خرچ کیا، لوگوں نے سخی کہا، انہوں نے جو ہے لوگوں کی مدد کی، لوگوں نے خوب اس کو جو ہے اس کو نام دیا. تو دنیا میں اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا. تو جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ ان کی نیکی کا یا ان کی کارگزاری کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کی نیکیوں کا مقصد مطلب جو تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا، نیت نہیں تھی. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو گیا. وَبَاطِلٌ، مٹ گیا. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا تھا. تو یہ آیات جو ہیں یہ اہم حقیقت کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے، اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے، آخرت میں باعث نجات بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نیت میں اخلاص ہو. آپ بھی سوچ لیں کہ آپ جو بھی عمل کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. اور دوسری یہاں بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو. تو پھر وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور اس کی اللہ کے ہاں جو ہے وہ جزا ملے گی. اگر کوئی نفاق ہے اس کے اندر, ریاکاری اس کے اندر پائی جاتی ہے, اور اس کی نیکی کا بدلہ, وہ جو نیکی کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے, اللہ کے لیے نہیں کرتا, تو اللہ کے ہاں اس کا کچھ بھی بدلہ نہیں ہوگا. جیسے ایک سخی اور ایک جو ہے شہید اور ایک قرآن کا قاری, وہ قیامت کے دن لائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈال دو, چونکہ انہوں نے جو عمل کیا تھا اللہ کی خاطر نہیں کیا تھا, دنیا کے لیے کیا تھا, اس لیے ان کو جو ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پیاری بہنوں, یہاں نیت کو پھل لگتا ہے پیڑوں سے یہ کہہ دینا, اسے کچھ بھی نہیں ملتا جو نیت ہار دیتا ہے. نیت میں ہو خلوص تو منزل ہے دو قدم, غالب ہو مصلحت تو ہر ایک مرحلہ طویل. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ احسن عملکم, جو اچھے عمل کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں اخلاص دے, اور جن عملوں میں اخلاص ہو تھوڑا کافی ہو جائے گا, اور اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے, نیت میں اخلاص نہیں ہے, تو عمل پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. تو ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں.